الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بكينا اور اس کا علاج، کینا اور بغض اور اس کا علاج کی بات چل رہی تھی. گزشتہ بتایا ہے کہ کینا کمرم جی، کینہ رکھنے پر وعید، اور کینہ والے کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. پھر بتایا کینہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، کینہ کسے کہتے ہیں. پھر کینہ کا علاج چل رہا تھا، تو ظاہر بات ہے اس کا علاج بھی وہی ہے جو حسد کا علاج ہے. تو جنت کے لیے قربانی دینی پڑتی، جنت اس قدر سستی نہیں کہ اس کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی. بعض اوقات جان کی قربانی، بعض اوقات مال کی قربانی، بعض اوقات جذبات کی قربانی. اور جذبات کی قربانی جان و مال کی قربانی سے زیادہ سخت ہوتی ہے. تو کینہ کے اندر جذبات کی قربانی دینی پڑتی. جذبہ جو انتقام کا بدلہ لینے کا ہے، اس کو قربان کر لو. تو بہرحال پہلا کام یہ کرو کہ تمہارے دل میں اس کی طرف سے جو برائی آ رہی ہے اس کو برا سمجھو. علاج چل رہی تھی اس میں سے، تو وہی حسد کے علاج ہے، اور وہی بتا رہے ہیں کہ میرے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ اچھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس برے خیال کو دور کرنے کا ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، یعنی کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کے ساتھ بغض نہ رکھے. دراصل یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ارشاد ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی بات ناپسندیدہ ہے تو اس کی کوئی بات پسندیدہ بھی ہوگی. تو اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض دور کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جس شخص کی طرف سے دل میں بغض پیدا ہو رہا ہے اس کی اچھائیوں کی طرف نگاہ کرو، اور اس کی اچھائیاں سوچ سوچ کر کے یاد کرو. یعنی یہ سوچو کہ میرے دل میں اس کی طرف سے جو بغض پیدا ہو رہا ہے اس کے فلاں صفت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے اندر صرف یہی ایک صفت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو اور بہت سے اوصاف ہیں. پھر ان کی اچھی صفتوں کو یاد کرو، اس کے نتیجے میں اس بغض میں کمی آئے گی. اب کینہ کے متعلق اور وعیدیں ہیں. دوسرا کام یہ کرو، کینہ کے متعلق وعیدوں کی طرف نظر کرو. پہلا تو کیا کرنا کہ بھائی اس کی اچھائیوں کی طرف نظر کرو، یہ کام. دوسرا کام کیا کرو، اس کی وعیدوں کی طرف نظر کرو. بغض اور کینہ رکھنے پر قرآن اور حدیث میں جو وعید آئی ہے، مثلا یہ کہ شب برات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جس کے دل میں دوسرے کی طرف سے بغض اور کینہ ہوگا وغیرہ، ان وعیدوں کی طرف نظر کرو. پھر عمل میں اس بات کا اہتمام کرو کہ اس شخص کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے، اور کوئی قدم عملاً اس کے خلاف نہ اٹھے، اور اس کے حق میں دعائے خیر کرو، اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. اس کے حق میں دعائے خیر کرو، غائبانہ دعا کرو، اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. تو بہت سارے علاج بتائے، وہی جو حسد کے علاج تھے. ایک تو اچھائیوں کو سوچا، دوسرا وعید اور عذاب کو سوچو، تیسرا اس کے لیے دعا کرو، اور چوتھا اس کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. جی، یہاں بات یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات دل میں دوسرے کی طرف سے بغض اور کینہ نہیں ہوتا. بعض اوقات دوسرے کی طرف سے بغض اور کینہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کو بغض سمجھ لیتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بغض اس وقت متحقق ہوتا ہے، کینہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب انسان دوسرے کی بدخواہی پر کمر بستہ ہو جائے، یعنی پوری محنت کر لے، کوشش کر لے اس کو گرانے کی، ذلیل کرنے کی، کچھ بھی کرنے کی، تکلیف پہنچانے کی. تو فرمایا اس کینہ کب پتا چلتا ہے کہ کینہ ہے، خالی اندر अंदर कुछ है तो वो कीना नहीं है। कीना उस वक्त पता चलेगा जब उसकी बदखाही पर इंसान मेहनत करे और जानबूझकर उसको तकलीफ पहुंचाने की फिक्र में लग जाए, और तकलीफ भी पहुंचाए तब तो उसको बुग्ज कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये बात है कि उस आदमी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा है, सिर्फ इतना है कि उस आदमी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा है और उससे तबीयत नहीं मिलती है, उसके घर मुलाकात करने के लिए जाने को दिल नहीं चाहता, तो ये बुग्ज नहीं बल्कि ये तबीयत का न मिलना है, ये बुग्ज नहीं है। हाँ, बाद मरतबा ऐसी चीजें होती है, अब इंसान घबराता है, ओ मेरे अंदर तो बुग्ज है जी। तो फरमाया, और ये तो अक्सर होता ही रहता है कि बाजू की तबीयत नहीं मिलती, भाई हम तो उसके पास नहीं जाएंगे। तो फरमा रहे हैं कि नहीं, ये बुग्ज नहीं बल्कि तबीयत का न मिलना है, तबीयत का न मिलना है, और अदम मुनासिबत है। लिहाजा अगर किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता तो न मिलो, अलबत्ता उसके जो हुकूक वाजिब है वो अदा करते रहो जी। उसके जो हुकूक वाजिब है वो अदा करते रहो, मसलन जब सलाम करने का मौका आए तो उसको सलाम करो, वो अगर सलाम करे तो उसका जवाब दो, अगर बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी कर लो, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो जाओ, अगर उसके यहाँ कोई शादी या गमी हो तो उसमें शरीक हो जाओ। बस ये काम जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इससे मेल जोल रखा जाए, ये जरूरी नहीं कि उससे बातचीत रखो, बल्कि ये उसके हुकूक है, उस हुकूक को अदा करो, उसके मेल जोल, उसके मुलाकात रखना, और सुबह शाम उसके साथ मजलिसे जमाई जाए और हंसी मजाक किया जाए, ये सब फजूल बातें हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये बात जरूरी है कि उसकी बदखाही न हो, बस। तो बहुत सी मरतबा एक इंसान से किसी से कोई दोस्ती होती है, कोई तकलीफ पहुंची तो अब उसको छोड़ देता, बोले नहीं मिलना, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ जाता कि उसको तकलीफ पहुंचानी है, और ये अक्सर ऐसा ही होता है। तो फिर वो बुग्ज नहीं है, ये बात भी बहुत साफ हो गई कि बुग्ज तो वो है कि जिसकी तकलीफ पहुंचाने में जानबूझकर पीछे पड़ा हुआ, प्लानिंग बना रहा है, तो ये बुग्ज है। प्लानिंग नहीं बना रहा है, मिलने नहीं जाना है, नहीं भाई मैं उससे बात नहीं करनी मुझे, तो ठीक है, और ये तकलीफ होगी क्योंकि ये फितरत है, गैर इख्तियारी है जी, तो उससे न मिले। तो फरमाया ये बुग्ज नहीं है। इसी तरह इसी बात को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह इस बात को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस मलफूज में बयान फरमा रहे हैं कि अगर किसी रंज की कोई बात पेश आए, अगर किसी गम की कोई बात पेश आए और तबीयत उससे मिलने को न चाहे, तो ये कीना नहीं बल्कि इनकिबाज़े तबई है, जो गुना नहीं। ये तबीयत में आता है कि अब नहीं मिलना है, तो फरमाए ये गुना नहीं। किसी रंज की कोई बात पेश आ जाए और तबीयत उससे मिलने को न चाहे, तो ये कीना नहीं है बल्कि इनकिबाज़े तबई है, जो गुना नहीं। यानी इंसानी तबीयतें मुख्तलिफ होती है, मिजाज अलग होते हैं, एक आदमी का मिजाज दूसरे से नहीं मिलता, तो ये कोई फर्ज नहीं कि दूसरे से जरूर मिला जाए, इसलिए ये बुग्स और कीना नहीं है, बुग्स और कीना नहीं। दूसरे के नुकसान से दिल में फरहत, देखिए जो लोग अपने शेख से इसलाह कराते हैं, जो लोग अपने शेख से इसलाह कराते हैं, वो लोग अपने हालात अपने शेख को लिखते रहते हैं कि मेरे साथ इस किस्म की बात पेश आ रही है, ये कोई बीमारी है या नहीं, अगर ये बीमारी है तो उसका इलाज क्या है जी। शेख से यही बातें मालूम की जाती है। चुनांचे एक साहब ने हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को खत में लिखा, अपने मुखालिफ को कोई नुकसान किसी से पहुंच जाता है, अपने मुखालिफ को कोई नुकसान किसी से पहुंच जाता है तो कल्ब में एक फरहत महसूस होती है, शेख को लिखा, साफ साफ बात, और होता है ये कि अपने मुखालिफ को कोई नुकसान पहुंचता है तो दिल में फरहत होती है, ये फितरत है। तो उन्होंने लिखा हजरत शेख, तो ये है शेख से इसलाह कराने का तरीका कि कि जो हालात दिल पर गुजर रहे हैं इनकी इत्तला शेख को की जाए। चुनांचे उस साहब ने यह महसूस किया कि जब मेरे मुखालिफ को कोई नुकसान पहुंच जाता है, मसलन उसके घर में आग लग गई, या उसके घर में चोरी हो गई, या उसकी बदनामी हो गई, तो उससे दिल में एक फरहत और खुशी महसूस होती है। आप बताएं कि ये फरहत होना गुना है या नहीं? अगर ये गुना और बीमारी है तो उसका इलाज क्या? अल्लाह, देखो ये हमें पूछने के बजाय लोगों ने ही पूछ लिया है और हमें तो बैठे बैठे जवाब मिल रहा है, क्योंकि ये सबका सवाल है। जवाब में हजरत थानी रहमतुल्लाह ने लिखा, अकलन और एतिकादन इसका इस्तेहजार किया जाए, अकल के एतबार से भी और ईमान के एतबार से इसका इस्तेहजार किया जाए कि ये फरहत काबिले दफा है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस फरहत को दफा फरमा दे, ये खुशी को निकालना चाहिए, अल्लाह ताला इस फरहत को दफा फरमा दे। हजरत वाला का एक एक लफ्ज टिका हुआ होता है, टिका हुआ यानी बहुत पॉइंटेड होता है, उसको कहते हैं टिका हुआ। फरमाया कि एक काम तो ये करो कि तुम्हें दूसरे के नुकसान से जो फरहत हो रही है, अकलन और एतिकादन इस बात का ध्यान करो कि दिल में इस खुशी का पैदा होना अच्छी बात नहीं। दिल में ये बात सोचो कि खुशी का पैदा होना अच्छी बात नहीं बल्कि बुरी बात है। अकलन और एतिकादन के अल्फाज इसलिए बयान फरमाए कि तबअन जो खुशी हो रही है, एक तो तबअन खुशी वो गैर इख्तियारी है, वो तो होगी, और एक अकलन होता है वो इंसान के इख्तियार में नहीं, ये गैर इख्तियारी है। जो तबन खुशी होती है वो इंसान के इख्तियार में नहीं, और गैर इख्तियारी पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआखजा भी नहीं। लेकिन अकली और एतिकादी तौर पर ये समझे कि उसका ध्यान करे कि मुझे जो खुशी हो रही है ये बहुत बुरी है, बुरी बात है, मुझे ये खुशी नहीं होनी चाहिए, ये खुशी काबिले दफा, इसको निकालना है, उसको खत्म हो जाना चाहिए, एक तो ये इंसान कोशिश करे अकल के एतबार से, क्योंकि तबीयत के एतबार से तो ये तो गैर इख्तियारी कुछ कर नहीं सकते, वो तो आ गई खुशी, लेकिन अकल से सोचे कि नहीं मुझे ये खुशी नहीं होनी चाहिए, हाँ तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरा काम ये करो कि दुआ करो कि अल्लाह ये खुशी बुरी बात है, सच्ची बात यह है कि मुझे खुशी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अल्लाह मेरे काबू से बाहर है, अपनी रहमत से मेरी खुशी दूर फरमा दे। दुआ कर, एक तो अकलन, दुआ अकलन इसको वो समझे कि अच्छी नहीं है, और दूसरा एतिकादन यानी ईमान के एतबार से दुआ करो कि अल्लाह मेरी खुशी को तो दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर, देखो कितनी बारीक बात बता दी, वरना ये बहुत सारे वसवसे होते हैं कि हो मेरा क्या होगा, अब ये है, बातें सुनते हैं ना फिर अंदर ही अंदर बाजों की तो बहुत सारी होती है, पुरानी दुश्मनी, फिर सोचते रहते हैं कि अब उसका क्या होगा, अब मैं क्या करूं, न इलाज कर सकते न कह सकते हैं। तो अभी देखो सब ऐसा लगता है जैसे गोया लोग सुनने वालों के दिलों में एक सवाल आ रहे हैं और यहां उसके जवाब मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुनने वाले बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो देखिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं फरमाया, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे दिल में जो खुशी पैदा हो रही है बहुत बड़ा गुनाह है, ये नहीं फरमाया, क्योंकि गैर इख्तियारी तौर पर इंसान के दिल में जो ख्याल आ जाता है वो गुनाह नहीं होता, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ नहीं होती, इसलिए कि वो इख्तियार से बाहर है। लेकिन अगर उसने इस ख्याल को दिल में जमा लिया और बिठा लिया, उसके बारे में तसव्वुर न किया कि गुनाह है, और ख्याल दिल में बैठकर कीना में तब्दील हो जाएगा, खुशी को दिल में बिठा ली ना तो फिर ये कीना में तब्दील हो जाएगा, और खुशी को निकालने की कोशिश की, दुआ कर दी, तो फिर ये कोई हर्ज नहीं, तो कीना में तब्दील हो जाएगा और उसके नतीजे में तुमसे गुना सरजद हो जाएंगे, उससे गुना सरजद हो जाएंगे, फिर गिबत होगी, फिर दिल आजारी होगी, दिल को तकलीफ पहुंचाने की बात होगी, और बदगोई होगी, बुराई होगी। लिहाजा इस ख्याल को, इस ख्याल का इलाज ये करो कि दिल से उसको बुरा समझो कि ये ख्याल जो मेरे दिल में आ रहा है बहुत बुरा है, और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह मेरे दिल से ख्याल निकाल दीजिए। ये दो काम तो फौरन कर लो और उस बात का एहतिमाम कर लो कि इस ख्याल के नतीजे में इसके खिलाफ कोई अमल ना हो। और क्या एहतिमाम करो कि ख्याल तो आया है लेकिन इसके ऊपर अमल मत करो। जैसे खुशी हुई, हाँ, तो खुशी पर अमल हुई, उस पर गीबत शुरू कर दी, उसको बुरा भला तकलीफ पहुंचाने की और भी अपनी तरफ से शुरू हो गई, तो फिर मैं कीना में तब्दील हो गया। लेकिन उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उस ख्याल के नतीजे में उसके खिलाफ कोई अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं। जी, एक साहब ने हजरत को खत में लिखा, आरजू है कि मुखालिफ की मुखालिफत को अपनी हरकत नाशाइस्ता व आमाले सैया का नतीजा समझू। क्या करें? आरजू है कि मुखालिफ की मुखालिफत को अपनी हरकत नाशाइस्ता व आमाले सैया का नतीजा समझू। कीना उस वक्त पैदा होता है, इसकी तशरी देखो, कीना उस वक्त पैदा होता है जब कोई मुखालिफ कोई तकलीफ पहुंचाए, इसलिए वो साहबी लिखते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह ताला मेरी तबीयत ऐसी बना दे, अल्लाह ताला मेरी तबीयत ऐसी बना दे कि जब भी किसी शख्स से कोई तकलीफ पहुंचे, किसी ने अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंचा दी पहुंचे तो मेरे दिल में इसके खिलाफ जज्बात पैदा होने के बजाय मेरे खिलाफ, मेरे दिल में इसके खिलाफ जिसने तकलीफ पहुंचाई उसके खिलाफ जज्बात पैदा होने के बजाय मेरे दिल में ख्याल पैदा हो कि मियाँ दुनिया में जो तकलीफ किसी इंसान को पहुंचती है वो उसकी बदअमली की वजह से पहुंचती है। यानी मेरे दिल में ये ख्याल हो कि जिस तकलीफ से पहुंचाई तो मेरी बदअमली की वजह से पहुंचती, जैसा कुरान करीम में है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम, यानी जो तकलीफ और मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत की वजह से पहुंचती है। जब ये बात है तो अब अगर दूसरा शख्स मुझे बुरा भला कह रहा है या दूसरा शख्स मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है तो दर हकीकत वो तकलीफ भी मेरी किसी बदअमली की वजह से पहुंची है। अगर मैं बुरा अमल न करता तो ये आदमी मुझे तकलीफ न पहुंचाता, चाहे वो तकलीफ किसी इंसान से पहुंचे या किसी जानवर से पहुंचे या जैद अमर बकर से पहुंचे, वो तकलीफ मेरे किसी बदअमल का नतीजा है। इसी तरह अगर कोई शख्स मुझे मार रहा है तो हकीकत में वो मुझे नहीं मार रहा है बल्कि मेरे किसी बुरे अमल की वजह से मुझे मारा जा रहा है। ये उस जुमले की तशरीह कर रहे हैं। अगर बादशाह जल्लाद को हुक्म दे, अगर बादशाह जल्लाद जो सजा देने वाला होता है, बादशाह जल्लाद को हुक्म दे कि फुला शख्स को 100 कोड़े मारो, तो अब बजाहिर तो वो जल्लाद मार रहा है ना, लेकिन हकीकत में तो बादशाह के हुक्म की वजह से मार रहा है। मारने वाला कोई और है लेकिन हुक्म देने वाला कोई और है, लिहाजा जिस शख्स को कोड़े मारे जा रहे हैं उसके दिल में बात होगी कि मेरा असल दुश्मन है जल्लाद नहीं बल्कि बादशाह है। इसलिए अगर कभी ये शख्स इंतकाम लेने का इरादा करेगा तो जल्लाद से इंतकाम नहीं लेगा, क्योंकि जब बादशाह ने मारने का हुक्म दिया तो अब जल्लाद की ये मजाल नहीं थी कि वो मारने से रुक जाता, उसको तो हुक्म के मुताबिक अमल करना था, उसकी तो ये ड्यूटी थी। लिहाजा अगर दिल में ये बात आ जाए कि ये शख्स जो मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है उसकी क्या मजाल थी कि मुझे तकलीफ पहुंचाता, ये तो दर हकीकत तकदीर उससे ये अमल करवा रही है और तकदीर इसलिए करवा रही है कि मैंने कोई बुरा अमल किया था, उसकी सजा मुझे दुनिया में मिल रही है, लिहाजा मैं तकलीफ पहुंचाने वालों को क्यों बुरा समझू। देखो, अगर कोई इंसान ऐसा समझ ले, सोच ले, अपनी थिंकिंग को बदल दे तो फिर वो तकलीफ पहुंचाने वालों को बुरा नहीं समझेगा। जब यह बात दिल में होगी तो फिर दूसरे की तरफ से बुराई और कीना दिल में नहीं आएगा। जी, ये बताया उन्होंने, क्या बताया? کہ آرزو ہے کہ مخالف کی مخالفت کو اپنی حرکات ناشائستہ و اعمال سیاح کا نتیجہ سمجھو. اس کو سمجھایا یہ, یعنی جو بھی انسان تکلیف مجھے پہنچا رہا ہے تو میرا یہ ایمان ہو, ہمیں تبلیغ میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارا ایمان ہو کس نے نہیں پہنچائی بلکہ اس کو اوپر سے حکم ہوا ہے, اس کو حکم ہوا. جب کیونکہ آج کوئی انسان کسی کو ایک جملہ بھی اگر کوئی گالی بھی بکتا ہے تو وہ اس کا امر نہیں ہے, یہ اوپر سے اس کو حکم ہوا ہے جب جا کے یہ مجھے بول رہا ہے. تو اب میں اس پر غصے ہو جاؤں یہ تو غلط بات ہے, بلکہ میں اپنی غلطی کو سوچوں, میں اپنے پچھلی غلطی سے استغفار کروں, توبہ کروں, تاکہ اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو دل سے نکال دے, مخلوق کے دل سے بھی نکال دے, اس کے دل سے بھی نکل جائے. تو بجائے اس پر حملہ کرنے کے, بجائے اس سے کینہ رکھنے کے, یہ سوچے کہ نہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے جو میں کر کے بھول گیا ہوں اور اس کی سزا مجھے مل رہی ہے, تو یہ سوچے گا تو کسی کے دل میں کینہ نہیں آئے گا. کہتے ہیں یقین, ہم کہتے ہیں ہر کام اللہ کرتا ہے, ہر کام اللہ کرتا ہے, تو جب کسی نے تمہیں ذلیل کیا تو کس نے کیا؟ یہ بھی تو اللہ نے کیا. کیوں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ یا تو میری ترقی چاہ رہے, یا میرے کسی گناہ کی طرف مجھے توبہ کرانا چاہ رہے, یا اور کیا مصلحت ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے اندر دیکھیں. آج انسان دوسرے پر اٹیک کرتا ہے, اپنے اندر اٹیک کرے کہ میرے اندر کیا ہے, میرے سے کوئی غلطی ہوئی. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا او جھوٹے, اب ایک انسان کو کہہ دے جھوٹا تو اس کو غصہ آ گیا. تو لیکن یہ غور کرو کس نے مجھے جھوٹا کہا ہے, اس کا مطلب میں نے آج کہیں نہ کہیں جھوٹ بولا ہے. یہ سوچو, تقاضا تو یہ تھا ایمان کا کہ سوچے. پھر وہ سوچے گا آج تو میں کہیں جھوٹ نہیں بولا, کل بولا ہوں, پرسو بولا ہوں, ہو سکتا ہے اس کو دو چار دن کا تو یاد ہوتا ہے باقی تو یاد نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے ایک ہفتہ پہلے بولا, اس کی سزا اب مل رہی ہے. کیوں؟ کہ جو میں نے کیا ہے اس کی سزا مل رہی ہے. اور پھر اس پر توبہ کر لے کہ اللہ میں نے کہیں نہ کہیں جھوٹ تو بولا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, میں اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو یہاں توبہ کی, اللہ نے وہاں معاف کر دیا, اللہ نے اس کے دل سے بھی نکال دی, اور اللہ اس ذلت کو عزت سے بدل دی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں, نہ یاد آ رہا ہے, پھر بھی توبہ تو کر لے, لیکن ہو سکتا ہے گناہ نہیں ہوا ہوگا, تو اللہ اس کے جملے سے ہماری ترقی دے گا کہ اس پر ہم نے صبر کیا, اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں درجات بلند کرتا ہے کہ ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے جو درجات تک پہنچنے کے لیے, تو اللہ نے کسی کو ہمارے پیچھے لگا دیا اور حالات ہمارے بگاڑ دیے اور ہمارے درجات کو بلند کر دیا. تو یہ باتوں کا یہ خلاصہ ہے اصل میں. تو اس سے کیا ہے, کینہ نہیں آئے گا دل میں. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا, یہ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ایسا میرا ہو رہا ہے, خط لکھا تھا, تو فرمایا اس کا استحضار اختیاری ہے. یعنی استحضار کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. تکرار استحضار سے اس میں رسوخ ہو جائے گا. کہا کہ اپنے آپ کو ایسا سوچے, استحضار کرے, تو بار بار کرنے سے اس میں پختہ, یعنی اس بات کا دل میں دھیان کرتے رہنا کہ مجھے جو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرے برے اعمال کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, یہ دھیان کرنا انسان کے اختیار میں ہے. اور تکرار استحضار یعنی ایسا دھیان بار بار کرنے سے اس کے اندر ایک مضبوطی آئے گی, یعنی بار بار جب یہ دھیان کرے گا تو رفتہ رفتہ یہ بات دل میں پیوست ہو جائے گی, جم جائے گی. تو پھر انسان کو پھر کوئی کچھ بھی کہہ دے کوئی تکلیف نہیں, بھائی کیا ہے, بولے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, سب اللہ کے ہاتھ میں. اور ہم رات دن بولتے ہیں اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, اور جب کوئی کچھ بول دیتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میں اکثر جو جماعت میں نکلتے ہیں میں نے کہا پھر اس کے پیچھے کیوں لگتے ہو, تم نے تمہارا ایمان کتنا بنا یا نہیں بنا وہ اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب کوئی تمہیں ٹوک دے, اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی. تو اس وقت میں اگر اس کے بدلہ لینے کی طرف جا رہے اس کا مطلب ابھی تک بنا نہیں. اور اگر اس کے اندر کمی آ رہی ہے, صبر آ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, لیکن پی رہے, تو سمجھو کہ ایمان کچھ بنا ہے. میں نے کہا یہ ایمان کی پہچاننے کا لیول ہے جب حالات بدلتے ہیں اس وقت. اور یہ چیزیں گھروں پہ جانے کے بعد پتا چلتا ہے, جماعت میں تو پتا نہیں چلتا کیونکہ وہاں تو اچھا ماحول ہوتا ہے, استقبال ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. گھر پہ جائیں گے تو کوئی رشتے دار کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, ارے تو ملا بن گیا, تو نمازی بن گیا, تو یہ بن گیا, اب چپ. कोई हमारी कोई ना कोई निकालेंगे। तो ये फरमाते हैं, तो अपने आप को सोचे तो हमें कुछ नहीं। हजरत जुन्नुन मिसी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, जुन्नुन मिसी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया रिसाले कुशेरिया में लिखा है कि एक मरतबा रास्ते में जा रहे थे, कोई बेवकूफ आपको तकलीफ पहुंचाने की गरज से पीछे पड़ गया। उस बेवकूफ के हाथ में डंडा था, वो उसने हजरत जुन्नुन मिसरी के सर पर मारना शुरू कर दिया। उस वक्त हजरत की जबान पर पहला जुमला जो है वो जुमला ये था, इज रिब रासन तालिमन असल्ला, यानी उस सर को मारो, इस सर को मारो, क्योंकि उस इस सर ने बहुत अरसे तक अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। इजरे ब्रासन जालिमन असल्ला, कि इस सर ने अल्लाह की, देखो अब जुन्नुन मिस्री तल्ला वाले है, कोई बेवकूफ मिलेगा उसको मार रहा है तो क्या कह रहे, मार इस सर को, इसलिए कि उसने बहुत अल्लाह की नाफरमानी की है। लिहाजा जो मार पड़ रही थी उसको अपनी बदामली की तरफ मंसूब किया। जी इन्हीं जुन्नुन मिसी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा वाकया है कि एक मरतबा लोग उनके पास आए और आकर कहा कि हजरत बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ा हुआ है, दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला इस कहत को दूर फरमा दे। अब लोग तो अल्लाह वालों के पास जाते, जवाब में फरमाए कि बारिश बदअमलियों की वजह से नहीं हो रही है और मुझसे ज्यादा बदअमल इस बस्ती में कोई और नहीं, लिहाजा मैं इस बस्ती से निकल जाता हूं, शायद मेरे निकलने के बाद इस बस्ती पर अल्लाह ताला की रहमत आ जाए। देखा अल्लाह अकबर, क्या सोच थी, क्या सोच थी। लोग तो आए दुआ कराने के लिए और क्या कह रहे कि भाई बारिश रुकी हुई है बदअमली की वजह से और पूरी बस्ती में मुझसे ज्यादा कोई बदअमल नहीं है, इसलिए मैं बस्ती से निकल जाता हूं ताकि तुम लोगों पर बारिश हो जाए। अपने आप को बदतरीन खलाइक समझ रहे हैं, हालांकि वो उस वक्त में उस इलाके में सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान, लेकिन क्या समझ रहे हैं, इसको कहते हैं जब अंदर बन जाता है तो फिर इंसान अपने आप को बदतरीन खलाइक समझता है कि मैं ही बुरा हूं। अल्लाह, ये है तवाजु का हाल कि वहां तक किबरा आ ही नहीं सकता, बदतरीन हूं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं हुई क्या, मैं तो उसी लायक हूं कि मेरा तो यही हो, मेरी बात न मानी जाए, मुझे जलील किया जाए, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अपने आप को तो यही समझे, क्योंकि इज्जत हर काम अल्लाह की तरफ से हो रहा है। याद रखो, जब हमारा भरोसा अल्लाह पर हो गया तो हमें किसी से दुश्मनी नहीं होगी, जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह कर रहा है, अच्छा भी बुरा भी सब काम, और उसकी कोई मसलहत है। बहरहाल ये बात सही है कि किसी के मजाल नहीं है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, न किसी इंसान की मजाल है, न किसी जानवर की मजाल है, न किसी जीन की मजाल है, जो कुछ हो रहा है वो किसी और की तरफ से हो रहा है और हिकमत की बुनियाद पर हो रहा है, क्योंकि हमारी और आपकी समझ में वो हिकमत नहीं आती, इसलिए इस नुकसान और तकलीफ पर वावेला करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये सोचेंगे तो फिर हमें कोई शिकायतें नहीं होंगी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स शेर के पिंजरे में आ जाए, शेर के पिंजरा, पिंजरा समझ गए ना, तो इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश में समझ जाए, शेर शेर के पिंजरे में आ जाए तो वो शख्स बेख्तियार होगा सिवाय तस्लीम और रजा के। पिंजरे में किसी को बंद कर दिया जाए के, तो क्या हो गया, अब वो बेख्तियार हो गया। अब उसके लिए यही है कि भाई जो तुम करो तस्लीम है, कबूल है, मारो तो कबूल, खाना दो तो कबूल, न दो तो कबूल, क्यों कुछ है ही नहीं, अभी केज में हो गए ना। तो फरमाया सिवाय तस्लीम और रजा के कोई चारा कार ही नहीं होगा कि तुझे खाना है तो खा ले और फाड़ना है तो फाड़ ले, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। शेर को पिंजरे में बांध दिया तो अब शेर का कुछ नहीं चलेगा, तस्लीम और रजा है, खाना हो तो खा ले, फाड़ना है तो फाड़ ले, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं। इसी तरह हर इंसान को सोचना चाहिए कि इस कायनात में सब काम मालिकुल मुल्क वल मलकूत की तकदीर से हो रहा है, कायनात में हर काम मालिकुल मुल्क वल मलकूत की तकदीर से हो रहा है, यानी अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो हो रहा है। अगर कोई तुम्हें पत्थर भी मार रहा है तो किसी की इज्न से मार रहा है, इजाजत से मार रहा है, किसी की मशियत और इरादे से मार रहा है। अब सवाल ये है कि वो मशियत क्यों हुई? किसी ने अगर पत्थर मारा, चाहे पत्थर पत्थर का हो या पत्थर बातों का भी हो, बात बात में पत्थर मार देते हैं ना। हाँ, जिसको ताना कहते हैं, ताना और तशनी क्या, ये भी एक पत्थर है, बल्कि ये जो पत्थर है वो ज्यादा जख्मी करता है, ये जो पहाड़ का पत्थर है वो कम जख्मी करता है, लेकिन जो जबान का पत्थर है ना उसका जख्म बहुत गहरा होता है। जो तान तशनी का जो पत्थर लगता है ना, तो इंसान का दिल चिर जाता है और वो जख्म जल्दी मिटता भी नहीं। तो फरमाया वो अगर तुम्हें मार रहा है तो अब सवाल ये होता है कि वो मशीयत क्यों हुई? किसी के इरादे से मारा, ऐसे कोई इंसान किसी को कुछ नहीं कहता। वो मशीयत और वो इरादा इसलिए हुई कि तुमने बदअमली की थी, कोई ना कोई गुनाह किया होगा, लिहाजा अल्लाह ताला ने चाहा कि तुम्हें दुनिया ही में सजा दे दे। देखो, मोमिन को जो हालात दुनिया में आते हैं वो याद रखो, वो पाक करने के लिए आते हैं, सजा के लिए नहीं है। जो मोमिन नेकी की तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, उसको पलटने के लिए है। और काफिर को जो हालात आ रहे हैं फरमाया वो सजा के लिए होते हैं। तो फरमाया तुम्हें दुनिया ही में सजा दे दे ताकि आखिरत में अजाब न देना पड़े, क्योंकि दो ही रास्ते थे, या तो आखिरत में जहन्नम में डालते या दुनिया ही में सजा दे देते। इसीलिए उसको मैं एक आसान बात में कहता हूं कि देखो भाई, हम सब बीमार है, और आपको पता है कि हमारे अंदर कितनी कितनी बीमारियां हैं रूहानी। तो अब इस बीमारियों का इलाज या तो यहां कर दो तो सेहत के साथ यहां से जाओ आखिरत में, और अगर इन बीमारियों के साथ गए हैं तो फिर आखिरत में अल्लाह ताला एक जहन्नम जो हॉस्पिटल बनाया है वहां फिर इन बीमारियों का सारा इलाज करेंगे, अगर ईमान के साथ गए हैं, और हमें शिफाए कामिला देकर फिर जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। अब ये सोच लो आप लोग कि क्या करना है, यहां इलाज करना है या वहां इलाज करना है? और यहां इलाज करना है तो आसान भी है, सस्ता भी है, और वहां का इलाज बहुत भारी महंगा है, बहुत तकलीफ दे होंगे। हाँ, इसलिए यहां कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए अल्लाह ताला अपने बास खास बंदों को यहीं पर इलाज कर लेते हैं। क्या हुआ, हालात डाल दिए, अब वो परेशान बेचारा, अब तोबा कर रहा है, अल्लाह वालों के पास बैठ रहा है, उनकी बातें मान रहा है, सुन रहा है, इसका इलाज हो रहा है। जी, तो इलाज करवा लो, और डॉक्टर का पता ना हो तो पता दे दूंगा, सुनने वाले तो है और सब सुन भी रहे और जानते भी है, बीमार भी है, लेकिन सोच रहे कि इलाज यहां करावे या आखिरत में, वो सोचते सोचते ही मौत आ जाएगी और बीमारी की हालत में चले जाएंगे। इसलिए इलाज करावे, और इलाज का तरीका वही है जो डॉक्टर जिस्म का इलाज है, सेम वही होगा, मानकर चलना। इसमें भी टेबलेट दी जाती है। तो फरमाया दो ही रास्ते हैं कि या तो आखिरत में जहन्नम में डालते या दुनिया ही में सजा देते। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम पर रहमत फरमाई कि आखिरत के अजाब के बदले दुनिया में ही सजा दे दी, ताकि यही हिसाब किताब साफ हो जाए। लिहाजा दूसरा शख्स तुम्हें जो तकलीफ पहुंचा रहा है, वो सोचना, जो बताया था ना कि कोई भी तुम्हें जो तकलीफ पहुंचा रहा है ये किसी की तकदीर के तहत है, यानी किसी के इरादे से हो रहा है, अल्लाह के इरादे से हो रहा है। लिहाजा इस आदमी से बुग्ज और किना रखने की क्या जरूरत है, ये जो लिखा हुआ था वो हो चुका, क्योंकि लिखे हुए को कोई टाल नहीं सकता, याद रखो, क्योंकि अल्लाह ने जो लिख दिया है वो कलम खत्म हो गया, खुश्क हो गए, अब वो मिटा नहीं। अब जो अल्लाह का प्रोग्राम, क्योंकि आजकल तो साइंस का जमाना है कि कंप्यूटर में कुछ फिट कर देते हैं, फिर बोले आजकल सब कंप्यूटराइज है, अब ऑटोमेटिक सब चल रहा है, वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, प्रोग्राम उसमें भर दिया है, अब उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, जिस कंपनी ने भरा है अब वही जानती है कि उसको कैसे करना है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कंप्यूटराइज पैदा करने से पहले ही कर दिया है। हाँ, हर चीज का कंप्यूटराइज हो गया है, उसकी हार्ड डिस्क वहां मौजूद है, वहां सब लिख दिया है, जिसको लोहे कलम कहते हैं। लो है, उस पर सब लिख दिया है, क्या क्या होने वाला है दुनिया में, क्या क्या हालात आने वाले हैं, सब कुछ लिख दिया है। अब वो कंप्यूटराइज है, सब कुछ हो रहा है उसके 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 वक्त में सब। हम सोच, अरे यार वो आ गया और उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने, अरे कुछ नहीं हुआ है, वो अल्लाह ने सब लिखा हुआ है। और वो कब कब कौन से साल में कब कब होने वाला है, कौन कितने पैदा होने वाला है, कहाँ पैदा होने वाला है, कितना रिस्क है, और वो कहाँ का सफर करने वाला, कहाँ का क्या खाएगा, उसकी किससे दोस्ती होगी, किससे दुश्मनी होगी, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब वो सब हो रहा है, तो अब उस पर अगर गोया हमारा यकीन है ना तकदीर पर, तो तकदीर है, तो अब कीना रखना ये गोया इस बात की अलामत है कि तकदीर से थोड़ा सा हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए इन सारी बातों से बताया जाता है कि तुम्हें तकलीफ तो हो रही है, लेकिन ये सोचो कि भाई ये लिखा हुआ था, हो गया, चलो छोड़ दो बात। हाँ, दिल में जो गुस्सा आया, अब वो जो जबान से या कह सकते, खत्म करके दिल में खत्म कर दो, फिर कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन इंतकाम पे पीछे लगना, नहीं, उसको लेना है, उसके प्रोग्राम बनाना, उसके मशवरे करना, उसका ये सोचना, तो ये सारा तकदीर के खिलाफ हो रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारा लिखा था वही तो हुआ है, क्योंकि अल्लाह का लिखा हुआ टाल नहीं सकते। इसलिए ये चीज में होना चाहिए कि जो तकलीफ पहुंचा रहे किसी की तकदीर के तहत हो रहा है। तो समझ में आ गया, अभी आज का साइंस का जमाना समझ में आता है कि कंप्यूटराइज कर दो, ऑटोमेटिक चल रहा है, तुमने प्रोग्राम डाल दिया, अब वो प्रिंट होकर आ रहा है। क्या हुआ भाई, जो लिखा हुआ है वही प्रिंट होकर आएगा, तो वहां पर उन्होंने लिख दिया है और यहां प्रिंट हो रहा है, हालात जो आ रहे हैं सब प्रिंट हो रहा है जी। तो हम देख रहे हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई वही बात हुई, वही सब चीजें हो रही है। तो ऐसा जमाना आना, उस जमाने में ऐसी ऐसी चीजें होना, आंधी आना, बारिश आना, बारिश का कम होना, सब कुछ, तो हमारा उस पर यकीन रखा जाए। इसलिए अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे। आज की दुनिया के हालात यह है कि इंसान का ताल्लुक अल्लाह से टूट चुका है, इसलिए हर इंसान जाहिरी हालात को ठीक करना चाहता है, और जैसे हमारे माशरे में जो चीज चल रही है हम उसी में घुस रहे। अरे नहीं, माशरा हमारे लिए नमूना नहीं है, हमारे लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या कहता है वो हमारे लिए नमूना, तो वही कहता है। तो लिहाजा इस आदमी से बुग्ज और कीना रखने की क्या जरूरत है? अगर कीना रखना है तो अपनी बदामालियों से कीना रखो, कीना रखना है तो अपनी बदामालियों से कीना रखो, अपनी बदामालियों से बुग्ज रखो, जिनकी वजह से उसको तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का ये हौसला पैदा हुआ। अगर ये ख्याल करोगे तो फिर इंशाल्लाह दिल में किसी दूसरे की तरफ से बुग्ज और कीना पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुराकबा कर ले।